سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، پچھلے چند دنوں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں. چنانچہ سب سے پہلے شخص جس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین شخص یہ وہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. دوسرا شخص جس کے بارے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اللہ کے نبی نے ان کو سب سے بہترین شخص کہا، یہ وہ شخص کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. پچھلے 3-4 دن سے ہم اس تیسرے شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین شخص، اور یہ وہ ہے جو زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، جتنی بھی آدم علیہ السلام والسلام کی اولاد ہے سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، مگر ان خطا کاروں میں سے سب سے بہترین لوگ وہ توبہ کرنے والے ہیں. اس حوالے سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو توبہ صرف گناہ کے بعد پسند نہیں، بلکہ یہ استغفار اور توبہ یہ نیکی کے بعد بھی اللہ کو پسند ہے. چنانچہ قرآن پاک میں 2 جگہوں پہ اللہ نے بڑی نیکی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، مگر تذکرہ یہ کیا کہ اس نیکی کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا کام کیا، بلکہ اس نیکی کے بعد انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحاری هم یستغفرون. تہجد پڑھنے والوں کی جب تعریف کی کہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، تو راتوں کو کم سوتے ہیں، عبادت میں رات گزری، مگر ان کی اچھی بات یہ ہے کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کے سامنے استغفار. پھر قرآن پاک میں ایک جماعت کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ جنہوں نے انبیاء کی مدد کی اور اپنی جانیں بھی پیش کی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے عمل کے بعد وَمَا كَانَ قَوْلِهِمْ إِلَّا ان قالوا ربنا اغفر لنا. اتنے بڑے عمل کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بس اب اپنی رحمت کر دے، اب تو ہم نے بڑا کام کر لیا، بلکہ اتنے بڑے عمل کے بعد انہوں نے عرض کی ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر. تو یہ مغفرت مانگنا اللہ سے، توبہ اور استغفار کرنا، یہ صرف گناہ کے بعد نہیں نیکی کے بعد بھی کرنے والی چیز. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جو توبہ اور استغفار ہے، یہ ہے تو ایسے عام سی چیز، ہر وقت ہی ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا چاہیے. اصلاح کے لیے جو شخص شیخ کے پاس جاتا ہے سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ جی صبح شام توبہ اور استغفار کرنا ہے، مگر اتنی مشہور ہونے کے باوجود بھی یہ چیز بہت ہی طاقتور ترین چیز ہے اللہ کے قرب کے اعتبار سے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اس کی تشریح تو یہی ہوئی کہ جو توبہ کرے گا وہ اللہ کا ولی ہے. تو اس لیے خوب توبہ کرنی چاہیے، ہر گناہ پہ توبہ کرنی چاہیے، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والے کو حقارت سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ایک اچھی توبہ کر کے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا اور آپ اس کو حقارت سے دیکھتے رہ جائیں گے. تو اس لیے ہر شخص کو اپنے سے بہتر ہی سمجھنا چاہیے. किसी भी वक्त वो तौबा करके और हमसे बहुत निकल जाए। और हदीस पाक में कसरत से ऐसे वाकयात मौजूद कि पूरी जिंदगी जिना किया, एक तौबा की और अल्लाह ने अपने औलिया के साथ खड़ा कर दिया। तो इसलिए एक रुख तो यही है कि तौबा करने वाले सबसे बेहतरीन लोग हैं, तो हमें खूब तौबा करनी चाहिए। एक रुख इसका ये भी है कि जो भी तौबा करेगा वो बहुत ऊंचे चला जाएगा, और कई मर्तबा इतना ऊंचा कि हम सोच भी नहीं सकते। उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। पहाड़ के बराबर गुनाह होंगे, लोग यही समझेंगे गुनाहगार है, जानी है, बदकार है, अल्लाह ताला उसकी तौबा में सारे गुनाह को बदल के नेकियों में तब्दील कर। इसलिए दूसरों को हकारत से देखना ये अल्लाह को पसंद नहीं। हम ये समझते हैं कि जी नेक लोगों को हकारत से नहीं देखना चाहिए, डरते हैं कई मर्तबा कि जो उलमा है अल्लाह वाले हैं, हम कहते हैं चलो गलती भी हो गई कोई बात नहीं, है तो नेक, जिंदगी इनकी नेकी पे गुजरी है, हम कहते हैं। अगर कुरान और हदीस पर नजर डालें, गिरा पड़ा शख्स को भी अगर आप तहकीर से देखेंगे ना, उस पर भी पकड़ है। अल्लाह तारीख इस्लाम में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बड़े बड़े नेक लोग, उनकी पकड़ इस बात पे हुई कि उन्होंने हकारत से देखा गुनाहगारों को। तो इसलिए किसी को भी हकारत से नहीं देखना। एक वाक्य जरूर बयान किया जाता है, अकाबरीन कसरत से बयान फरमाते हैं, वो हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का वाक्य है कि आपके दम से बड़ी खानकाएं आबाद थी। हजरत शिबली जैसे बुजुर्ग भी आपके मुरीदीन में से थे, लाखों लोग इस्लाह के सिलसिले में आपसे जुड़े हुए, और अपने मुरीदीन के साथ आप ईसाइयों की बस्ती में से गुजर रहे थे, और आपकी नजर एक ईसाई लड़की पे पड़ी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार। मुरीदीन साथ हैं, रूहानी पेशवा, और मुरीदीन भी आम नहीं, हजरत शिबली जैसे लोग उन मुरीदीन में शामिल हैं। और निगाह पड़ती है एक लड़की पे, और आप इन सारे मुरीदीन को इस मोहब्बत की वजह से मजबूर होके कहते हैं कि भाई अब जाओ, मेरा कोई और काम है। और वो सब चले जाते हैं और आप उस लड़की के पास जाते हैं कि जी मैंने तुझसे शादी करनी है, ईसाई लड़की के पास। कहा ऐसे शादी कैसे, मेरे वालिद से पूछो। वालिद ने कहा कि हम तो ईसाइयों के अलावा और किसी को शादी नहीं करते अपनी बच्चियों। अल्लाह अकबर, यानी आंखों पे पट्टी किस दर्जे की कि दीन छोड़ के ईसाइयत को भूल कर ली। वालिद ने कहा नहीं अब भी नहीं करते, हमें क्या पता तो अभी वापस फिर लौट जाएगा, 2 साल हमारे यहाँ रहे, 2 साल गुजरेंगे तो फिर करेंगे। तो 2 साल वहां पे गुजारने के रहा, यानी पीछे क्या चल रहा है दीनी का, किस आजमाइश में पहुंच गए। 2 साल उस ईसाई शख्स के सुअरों को चराते थे, उस असा के साथ जिस असा के साथ जुम्मे का खुतबा देते थे उससे सुअर चरा। अल्लाह, यानी तारीख इस्लाम में पकड़ होने का इससे बड़ा वाकया शायद ही कोई हो। किताबों में लिखा है कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने बड़ी दुआएं मांगी कि जी मेरे शेख जिंदगी भर नेकी करते रहे या रहम फर, और बड़ी उम्मीद लेके 2 ढाई पता नहीं काफी अरसे बाद हजरत की खिदमत में हाजिरी दी। और हजरत से पूछा कि आपको कुरान याद है? उन्होंने कहा कुछ भी याद नहीं, अगर एक आयत याद है, वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह जलील करने पे आता है उसके लिए फिर कोई इज्जत नहीं। तो शेख भी रोए, हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत रोए, वो जो दुआएं की थी मुरीद ने शेख के लिए, उसने शेख को इस आजमाइश से निकाला, फिर तो बताए वो है। तो किसी ने पूछा कि हजरत ये कैसी आजमाइश आप पे आ गई, जब वापस सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया? उन्होंने कहा कि इन ईसाइयों को हकारत की नजर से देखा कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, एक खुदा को नहीं मानते, तीन खुदा को मानते हैं, तो उनको बहुत ही तहकीर से देखा। बातें इस पे अल्लाह ने पकड़ कर ली कि तू जो दीन पर खड़ा है ये कोई तेरी अपनी कोशिश है, तो अल्लाह की रहमत की वजह से खड़ा है। तो ये सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने इस आजमाइश में डाल
अच्छा
दिया। तो तौबा एक बहुत जबरदस्त चीज है, कोई भी तौबा करके औलिया की सफ में खड़ा हो सकता है। इसलिए तौबा हमें करनी भी ज्यादा चाहिए, और ये तौबा हमें ये भी सबक देती है, ये तौबा हर एक के लिए अल्लाह ने रखी है, इसलिए किसी को भी तहकीर से नहीं देख सकते। जो तंज करना, किसी को नीचा दिखाना, खास तौर पे जो लोग गुनाह कर बैठते हैं ये गलती कर बैठते हैं, तब हम समझते हैं कि तो अब तो हमारे पास बड़ा एक राइट आ गया है कि हम इसको खूब वो करो, फिर हम सुनाते हैं दूसरों को भी, बयान करते हैं देखा ये हरकतें कर रहा है, इधर भी बयान और उससे भी कह रहे हैं, उससे भी कह रहे हैं। एक आखिरी हदीस पर आज का बयान मुकम्मल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दूसरों के छुपे हुए ऐबों के पीछे पड़ना छोड़ दो, तुम दूसरों के छुपे हुए ऐबों के पीछे पड़ना छोड़ दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे छुपे हुए ऐबों के पीछे पड़ जाएंगे, और जिसके ऐबों के पीछे अल्लाह पड़ जाए उसको जलील करके रखेंगे, चाहे वो अपने घर में बैठा क्यों। तो कायनात के बेहतरीन लोग वही जो तौबा ज्यादा करते हैं, अगर हम तौबा करेंगे तो हम भी अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, मगर कोई और करेगा तो वो भी अल्लाह के नजदीक हो जाएगा। इसलिए हर एक को इज्जत दे, जिस तरह माल खर्च करने से इंसान का माल बढ़ जाता है, इसी तरह से इज्जत और मोहब्बत दूसरों पे खर्च करने से इंसान की अपनी इज्जत और उसके मोहब्बत करने वाले बढ़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दूसरों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, सलातुस्सलाम اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلى الله تعالى على حبيب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.